नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2025-26 का 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में किसान, महिला और युवाओं के लिए विशेष प्रावधान। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2,220 डॉल्फिन के साथ बिहार देश भर में दूसरे स्थान पर। महान कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु की जयंती आज। पैतृक गांव अररिया के औराई हिंगना समेत प्रदेश भर में आयोजित की जा रहे हैं कई कार्यक्रम। और आईसीसी चैंपियंस क्रिकेट ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का आकार लगभग 3,17,000 करोड़ रुपए है। ये पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 38,000 करोड़ रुपए अधिक है। बजट में 52 नई घोषणाएं की गई हैं। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि अब राज्य के किसानों से अरहर, मूंग और उड़द की दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदी जाएगी।
बिहार में MSP पर अरहर, मूंग और उड़द दाल को भी खरीदने का काम, जिस तरह धान अधिप्राप्ति करते हैं उसी तरह करने का काम सरकार करेगी। राज्य के सभी अनुमंडल एवं सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध रूप से करने की घोषणा सरकार करती है। वेजफेड द्वारा सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से सभी प्रखंडों में सरकारी सुविधा आउटलेट खोलने की घोषणा सरकार करती है।
बजट में 21 कृषि बाजार उत्पादन समिति के लिए 1,289 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करने के लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाई जाएगी। समस्तीपुर के पूसा में गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। बजट में महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को ई रिक्शा और दुपहिया वाहन खरीदने के लिए अनुदान मिलेगा। इसके अलावा बड़े शहरों में पिंक बस सेवा की शुरुआत की जाएगी, जिसमें सिर्फ महिलाएं सफर कर सकेंगी। इन बसों का संचालन भी महिलाओं द्वारा होगा। प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए ड्राइविंग सेंटर खुलेंगे, जिसमें ट्रेनर भी महिलाएं होंगी। वित्त मंत्री ने पंचायत स्तर पर गरीब कन्या विवाह मंडप बनाए जाने की भी घोषणा की है।
राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य सभी बड़े शहरों में स्थापित वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए स्थान को पूरी तरह कनाकित करने का काम राज्य सरकार करेगी। राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में निजी मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। शहरी क्षेत्र में नगर चिकित्सा सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बेगूसराय में कैंसर अस्पताल खोले जाने की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि जिन 358 प्रखंडों में अब तक अंगीभूत राजकीय डिग्री महाविद्यालय नहीं हैं, वहां सरकारी या निजी स्तर पर महाविद्यालयों की स्थापना होगी। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग को दी जाने वाली प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि दोगुना करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल हवाई अड्डे को विकसित किया जाएगा। साथ ही भागलपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट से अगले 3 महीने में हवाई यातायात शुरू किए जाने की घोषणा की है।
हवाई अड्डे का भी निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले यह तय हुआ है कि पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण शीघ्र चालू करने का काम किया जाएगा और अगले 3 महीने में वहां से हवाई जहाज उड़ेगा, यह जरूर सुनिश्चित करने का काम।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसकी सराहना की, कहा इसे संपूर्ण समावेशी और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट बताया। श्री कुमार ने कहा कि इसमें किसानों, उद्यमियों, युवाओं और महिलाओं समेत समाज के सभी वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है। उद्योग जगत ने राज्य के बजट का स्वागत किया है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन BIA के कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बजट को उद्योग जगत के लिए लाभकारी बताया है।
प्राइवेट सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे, तो इस हिसाब से अगर हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार प्राइवेट सेक्टर्स को ज्यादा प्रमोट करती है तो उसके बहाने उसी के चलते यहाँ पे और इंडस्ट्री वगैरह में डेवलपमेंट होगा, नई इंडस्ट्री आएंगे।
आम लोगों ने भी बजट की घोषणाओं की सराहना की है। खासकर महिलाओं ने इस बजट में उनके लिए किए गए विशेष प्रावधानों का स्वागत किया है।
मैं चूंकि एक महिला उद्यमी रह चुकी हूं, तो मुझे इसके पता है कि महिलाओं को कितना दुख होता है। जो हार्ट का व्यवस्था इस बजट में आया है और हम लोग इस बजट का दिल से स्वागत करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो अभी 8 मार्च को हम लोग मनाने की पूरी तैयारी में है, वहाँ पे हमें पिंक बस और पिंक टॉयलेट जो मिल रहा है, होली के रंगों में रंगा हुआ गुलाबी रंग हम महिलाओं के लिए गौरवान्वित कर रहा है।
रानी नाम है मेरा। ओके, सो वी आर लाइक क्वाइट सैटिस्फाइड विद व्हाटएवर गवर्नमेंट हैज डन फॉर अस एंड वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट जो कर रही है उसके लिए हम बहुत ज्यादा आभार प्रकट करते हैं।
पिंकी कुमारी, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सरकार के इस कदम के लिए।
इधर राजद तथा कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि बजट में कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने बजट में विपक्ष की मांगों को अनदेखा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बजट को उम्मीद के प्रतिकूल बताया है। वामपंथी दलों ने भी बजट की आलोचना की है। विधानमंडल में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। आज ही राज्य सरकार इस चर्चा का जवाब देगी। विधानमंडल में कल बजट पर चर्चा होगी। 6 मार्च को सरकार बजट पर चर्चा का उत्तर देगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब एक जरूरी सूचना।
आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_patna से प्राप्त की जा सकती हैं।
बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पहली बार नदी में डॉल्फिन की संख्या का आकलन करने की रिपोर्ट जारी की है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक में जारी इस रिपोर्ट में देश में कुल 6,327 डॉल्फिन होने का अनुमान लगाया गया है। इस अग्रणी प्रयास में बिहार समेत 8 राज्यों की 28 नदियों का सर्वेक्षण किया गया। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 2,397 और बिहार में 2,220 डॉल्फिन पाई गई हैं। निर्वाचन आयोग आज से नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। श्री ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभालने के बाद ऐसा पहला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल के फिर से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिक घोषणा आज की जाएगी। भाजपा राज्य परिषद की पटना में आज होने वाली बैठक में ये घोषणा की जाएगी। बैठक में प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी दीपक प्रकाश भी मौजूद रहेंगे। महान आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की आज जयंती है। 104 साल पहले उनका जन्म कोसी क्षेत्र के अररिया जिले के औराई हिंगना गांव में हुआ था। साहित्यिक सृजन में उन्होंने एक गांव और अंचल को मुख्य केंद्रीय पात्र बनाकर जो खाका पेश किया वो साहित्य की नई विधा के रूप में उभरा है, जिसे हम आंचलिक साहित्य कहते हैं। एक रिपोर्ट।
मैला अचल प्रति परिकथा, आदिम रात्रि की महक और न जाने कितनी रचनाएं फणीश्वरनाथ रेणु ने बाढ़ की विभीषिका वाले इस क्षेत्र को समर्पित की। वे इस धरती को अपनी प्रेरणा का स्रोत बताने में हमेशा आगे रहते थे।
कोसी अंचल के बारे में जब भी कुछ कहने या लिखने बैठता हूँ बात बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाती है। ऐसा होना स्वाभाविक ही है क्योंकि कोसी हमारे लिए नदी ही नहीं माई भी है। पुण्य सलिला छिन्नमस्ता भीमा भयानका भी प्रभावती कोसी मैया।
रेणु की रचनाओं ने साहित्य प्रेमियों को तो आकर्षित किया ही, साथ ही भारतीय सिनेमा के शोमैन के नाम से मशहूर राज कपूर जैसे महान निर्माता निर्देशक और अभिनेता को भी अपनी ओर खींचा। रेणु की रचना लाल पान की बेगम को राज कपूर साहब ने सिल्वर स्क्रीन पर उतारा।
पान खाए पैया हमारो सौली चूरतिया होठ लाल लाल हाय हाय मलमल का कुर्ता मलमल के कुर्ते पे खींच लाल लाल।
फणीश्वरनाथ रेणु के पुत्र दक्षिणेश्वर प्रसाद राय कहते हैं कि सिनेमा का जादू अब भी बरकरार है।
फणीश्वरनाथ रेणु की बेजोड़ कहानी आज भी मन को गुदगुदाती है और मन मचल जाता है कि फिल्म एक बार फिर देखूं। और उसके गाने खास करके चलत मुसाफिर मोलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया आज भी दिल को गुदगुदाने लगता है और थिरकने को मजबूर कर देता है लोगों को।
चलत मुसाफिर मोलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया।
कोसी की उर्वरा धरती से निकले माटी के इस लाल ने पलायन का दर्द, कोसी क्षेत्र की समस्या, सामाजिक ताना बाना जिस रूप में पेश किया वह उनकी लेखनी का जादू था जिसने सबको कायल किया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
फणीश्वरनाथ रेणु की जयंती पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर कला संस्कृति और युवा विभाग, बिहार संगीत नाटक अकादमी और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से पटना में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुबई में आईसीसी चैंपियंस क्रिकेट ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल कल लाहौर में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानमंडल में पेश किए गए बजट और आईसीसी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मैच की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2025-26 का 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में किसान, महिला और युवाओं के लिए विशेष प्रावधान। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2,220 डॉल्फिन के साथ बिहार देश भर में दूसरे स्थान पर। महान कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु की जयंती आज। पैतृक गांव अररिया के औराई हिंगना समेत प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। और आईसीसी चैंपियंस क्रिकेट ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।